नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, सिंडी हाउसन की पुस्तक सक्सेसफुल बिजनेस इंटेलिजेंस सेकेंड एडिशन। बिजनेस इंटेलिजेंस रणनीति और उसके संगठनात्मक उपयोग पर केंद्रित एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य केवल रिपोर्टिंग टूल या डैशबोर्ड चुनना नहीं, बल्कि डेटा को बेहतर निर्णयों, मापनीय व्यावसायिक मूल्य और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में बदलने की पूरी व्यवस्था समझाना है। अद्यतन संस्करण में बिग डेटा, क्लाउड, मोबाइल पहुंच, विजुअल डेटा डिस्कवरी और इन मेमोरी कंप्यूटिंग जैसे विषय शामिल हैं। हाउसन का मुख्य तर्क है कि BI पहल की सफलता तकनीक खरीदने से तय नहीं होती, उसे व्यावसायिक लक्ष्यों से जोड़ना, वरिष्ठ नेतृत्व का समर्थन पाना, भरोसेमंद डेटा उपलब्ध कराना, सही लोगों को सक्षम बनाना और बदलती जरूरतों के अनुरूप तेजी से काम करना उतना ही आवश्यक है। पुस्तक रणनीति, डेटा प्रबंधन, प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और तकनीकी विकल्पों को एक ही ढांचे में देखती है, इसलिए यह उन संगठनों के लिए उपयोगी है जो बिखरी रिपोर्टों और अलग अलग डेटा स्रोतों से आगे बढ़कर अनुशासित, उपयोगी और व्यापक एनालिटिक क्षमता बनाना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, BI रणनीति को सीधे व्यावसायिक लक्ष्यों और मापनीय मूल्य से जोड़ना। पुस्तक का केंद्रीय संदेश यह है कि बिजनेस इंटेलिजेंस की शुरुआत टूल चयन से नहीं, व्यावसायिक प्राथमिकताओं से होनी चाहिए। यदि किसी पहल का संबंध राजस्व, लागत, ग्राहक सेवा, जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला या संचालन की गति जैसे स्पष्ट परिणामों से नहीं है, तो वह आकर्षक रिपोर्टों तक सीमित रह सकती है। हाउसन BI को निर्णय सहायता की क्षमता के रूप में रखती है, इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि संगठन कितना डेटा जमा कर सकता है, बल्कि यह है कि कौन से निर्णय बेहतर होंगे और उनके प्रभाव को कैसे मापा जाएगा। यह दृष्टि निवेश पर प्रतिफल की चर्चा को भी अधिक वास्तविक बनाती है। हर लाभ को केवल वित्तीय आंकड़े में बदलना जरूरी नहीं, लेकिन समय की बचत, निर्णय की गुणवत्ता, त्रुटियों में कमी, डेटा की पहुंच और ग्राहक प्रतिक्रिया जैसे परिचालन संकेतकों को पहले से परिभाषित करना आवश्यक है। व्यावसायिक लक्ष्य BI टीम को प्राथमिकताएं तय करने में मदद देते हैं, क्योंकि हर डेटा अनुरोध समान महत्व का नहीं होता। इससे परियोजनाएं केवल तकनीकी उपलब्धि के बजाय उपयोगकर्ता की समस्या और संगठनात्मक परिणाम के आधार पर चुनी जाती है। पुस्तक इसीलिए BI रणनीति को व्यापक कॉर्पोरेट रणनीति का सहायक नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाला निर्णय तंत्र मानती है। दूसरा, कार्यकारी समर्थन और एनालिटिक संस्कृति को BI अपनाने की शर्त मानना। हाउसन के अनुसार, BI कार्यक्रम का टिकाऊ होना नेतृत्व और संस्कृति पर निर्भर करता है। वरिष्ठ प्रायोजक केवल बजट मंजूर करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसकी भूमिका प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, विभागों के बीच विवाद सुलझाने, डेटा आधारित निर्णयों को वैधता देने और परिणामों के लिए जवाबदेही बनाने की है। कई संगठनों में विभाग अपने अपने आंकड़ों, परिभाषाओं और रिपोर्टों के साथ काम करते हैं। ऐसी स्थिति में तकनीकी एकीकरण पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि लोग अपने परिचित तरीकों और स्थानीय नियंत्रण को छोड़ने में संकोच कर सकते हैं। पुस्तक इस मानवीय पक्ष को BI की सफलता का मूल तत्व मानती है। एनालिटिक संस्कृति का अर्थ हर कर्मचारी को डेटा वैज्ञानिक बनाना नहीं है, इसका अर्थ है कि निर्णयों में प्रमाण मांगा जाए, प्रमुख मेट्रिकों की साझा समझ हो और उपयोगकर्ताओं को डेटा पढ़ने तथा प्रश्न पूछने का भरोसा मिले। नेतृत्व को यह भी स्वीकार करना होता है कि पारदर्शी डेटा कभी कभी पुराने अनुमान या शक्ति संतुलन को चुनौती देगा, इसलिए संचार प्रशिक्षण और लगातार उपयोगकर्ता सहभागिता परिवर्तन प्रबंधन के आवश्यक भाग है। यह विषय पुस्तक को केवल IT क्रियान्वयन संबंधी पुस्तकों से अलग बनाता है। तीसरा, डेटा गुणवत्ता, डेटा वेयरहाउसिंग और सही सूचना की समयबद्ध उपलब्धता। विश्वसनीय BI का आधार डेटा है, लेकिन केवल अधिक डेटा होना पर्याप्त नहीं। पुस्तक डेटा की गुणवत्ता, व्यापकता और समयबद्धता में निरंतर सुधार को जरूरी बताती है। यदि ग्राहक, उत्पाद, बिक्री या लागत की परिभाषाएं अलग अलग प्रणालियों में भिन्न हों, तो एक ही प्रश्न के कई उत्तर निकल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उपयोगकर्ता डैशबोर्ड की बजाय अपनी निजी स्प्रेडशीट पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए डेटा वेयरहाउसिंग और एकीकृत डेटा प्रबंधन का उद्देश्य सिर्फ संग्रहण नहीं, बल्कि साझा परिभाषाएं, उपयुक्त इतिहास, नियंत्रित रूपांतरण और भरोसेमंद रिपोर्टिंग आधार बनाना है। हाउसन का दृष्टिकोण यह भी संकेत देता है कि डेटा गुणवत्ता कोई एक बार की सफाई परियोजना नहीं है। नए स्रोत, बदलती व्यावसायिक प्रक्रियाएं और अलग उपयोग मामलों के साथ गुणवत्ता की आवश्यकताएं बदलती रहती है। संगठन को डेटा स्वामित्व मानकों और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां स्पष्ट करनी पड़ती है। साथ ही हर निर्णय के लिए वास्तविक समय डेटा आवश्यक नहीं होता। सही ताजगी का स्तर निर्णय की प्रकृति, लागत और जोखिम से तय होना चाहिए। यह व्यावहारिक संतुलन संगठनों को अनावश्यक जटिलता से बचाते हुए उन डेटा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने देता है जिनका वास्तविक व्यावसायिक उपयोग है। चौथा, बिग डेटा क्लाउड और नए प्लेटफॉर्मों को कार्यभार के अनुसार चुनना। दूसरे संस्करण में बिग डेटा क्लाउड इन मेमोरी कंप्यूटिंग और एनालिटिक उपकरणों के विस्तार को शामिल किया गया है, फिर भी पुस्तक इन्हें अनिवार्य फैशन के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। इसका उपयोगी सिद्धांत यह है कि तकनीकी वास्तुकला को कार्यभार के अनुसार चुना जाए। पारंपरिक डेटा वेयरहाउस एनालिटिक अप्लायंस और हेडूक जैसे विकल्पों की उपयोगिता डेटा के प्रकार, मात्रा, गति, लागत, विश्लेषण की जरूरत और उपयोगकर्ता अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, संरचित और नियमित प्रबंधन रिपोर्टिंग की जरूरतें उन प्रयोगात्मक या विविध डेटा विश्लेषणों से अलग हो सकती है जिनके लिए अधिक लचीला प्लेटफॉर्म चाहिए। क्लाउड पहुंच और विस्तार क्षमता दे सकता है, जबकि इन मेमोरी तकनीक कुछ विश्लेषणों में तेजी ला सकती है, लेकिन इन विकल्पों से शासन, सुरक्षा, एकीकरण, लागत नियंत्रण और कौशल की चुनौतियां समाप्त नहीं होती। पुस्तक का व्यापक संदेश है कि संगठन को नई तकनीक की क्षमता और उसके संचालनात्मक परिणाम दोनों को समझना चाहिए। तकनीक को रणनीति का विकल्प मानने के बजाय उसे डेटा पारिस्थितिकी तंत्र के एक घटक के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार पाठक चमकदार उत्पाद दावों के बजाय उपयोग मामले आधारित निर्णय का दृष्टिकोण विकसित करता है। अंत में विजुअल डेटा डिस्कवरी, मोबाइल पहुंच और एजाइल डिलीवरी से उपयोग बढ़ाना। BI का मूल्य तभी बनता है जब लोग उपलब्ध जानकारी को समझें और अपने काम में प्रयोग करें। पुस्तक विजुअल डेटा डिस्कवरी और मोबाइल पहुंच जैसे विकासों को इसी उपयोगकर्ता पक्ष से जोड़ती है। दृश्य रूप में रुझान, अपवाद और तुलना जल्दी दिख सकती है तथा खोजपरक विश्लेषण उपयोगकर्ताओं को पहले से तय रिपोर्टों के बाहर प्रश्न पूछने देता है। लेकिन स्वयं सेवा की स्वतंत्रता का अर्थ अनियंत्रित मेट्रिकों और असंगत डेटा की छूट नहीं है। उपयोगकर्ता अनुकूल खोज और केंद्रीय रूप से प्रबंधित विश्वसनीय डेटा आधार के बीच संतुलन आवश्यक है। पुस्तक एजाइल विकास प्रक्रियाओं के महत्व पर भी बल देती है, क्योंकि व्यावसायिक जरूरतें लंबी परियोजना अवधि में बदल सकती है। छोटे चरणों में उपयोगी क्षमता देना, उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेना और सुधारों को प्राथमिकता देना, लंबी अवधि के विशाल लेकिन देर से मिलने वाले समाधान की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। यह तरीका BI टीम को सीखने, गलत धारणाएं जल्दी पहचानने और अपनाने की बाधाएं समझने का अवसर देता है। फिर भी एजाइल का अर्थ योजना छोड़ना नहीं है। साझा वास्तुकला, डेटा मानक और स्पष्ट व्यावसायिक प्राथमिकताएं आवश्यक रहती है। इस विषय में पुस्तक गति, प्रयोग और शासन के बीच व्यवहारिक संतुलन प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में, सक्सेसफुल बिजनेस इंटेलिजेंस उन बिजनेस नेताओं, BI प्रबंधकों, डेटा और एनालिटिक्स टीमों, आर्किटेक्टों तथा परियोजना प्रायोजकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें BI को केवल रिपोर्टिंग व्यवस्था के बजाय संगठनात्मक क्षमता के रूप में समझना है। नए कार्यक्रम की योजना बना रहे पाठकों को इससे लक्ष्य निर्धारण, प्रायोजन, डेटा प्राथमिकता और तकनीकी चयन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टि मिलती है। जिन संगठनों के पास पहले से डैशबोर्ड, डेटा वेयरहाउस या कई एनालिटिक्स टूल हैं, वे इसे अपने कार्यक्रम की कमियां पहचानने के ढांचे की तरह पढ़ सकते हैं। पुस्तक का प्रमुख लाभ इसकी संतुलित स्थिति है। यह बिग डेटा और उभरती तकनीकों की चर्चा करती है, पर उन्हें सफलता का स्वचालित उत्तर नहीं बताती। साथ ही यह संस्कृति और नेतृत्व की बात करती है, पर तकनीकी आधार, डेटा गुणवत्ता और डिलीवरी प्रक्रिया की ठोस जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करती। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकें या तो टूल और वास्तुकला पर अत्यधिक केंद्रित रहती है या केवल डेटा संचालित संस्कृति का व्यापक आग्रह करती है। हाउसन इन दोनों सिरों को रणनीति, लोगों, प्रक्रियाओं, डेटा और प्लेटफॉर्म के परस्पर संबंध में रखती है। वास्तविक उदाहरणों और उद्योग अनुभव पर आधारित इसका रुख पाठक को किसी एक विक्रेता या फैशन के पीछे जाने के बजाय अपने उपयोग मामलों और व्यावसायिक संदर्भ के अनुसार निर्णय लेने में मदद करता है। तकनीकी विवरण समय के साथ पुराने हो सकते हैं, लेकिन BI को मूल्य, भरोसे और अपनाने से जोड़ने वाला इसका ढांचा उपयोगी बना रहता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सिंधी हाउसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।